नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौर। 4 जून 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, लुप्त होती जैव विविधता, जलवायु व्यवधान और बढ़ता प्रदूषण, दुनिया के समक्ष 3 बड़े खतरे। पर्यावरण की पीड़ा पर मरहम के लिए संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के दशक की शुरुआत। कोविड-19 महामारी के अंत और वैश्विक पुनर्बहाली के लिए $50 अरब की योजना पेश। वैक्सीन समता सुनिश्चित किए जाने पर बल। कोरोना वायरस संकट का श्रम बाजार पर भीषण असर। बेरोजगारी, निर्धनता और विषमता की चुनौती और गहरी हुई। साथ ही कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान खाद्य सुरक्षा संबंधी कौन सी चुनौतियां पनप रही हैं। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में यूएन पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के दशक की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दुनिया जैव विविधता की क्षति, जलवायु व्यवधान और बढ़ता प्रदूषण, इन 3 पर्यावरणीय आपात स्थिति का सामना कर रही है। इसके मद्देनजर समय आ गया है कि प्रकृति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई की जाए। यूएन प्रमुख ने कहा कि बहुत लंबे समय से मानवता ने धरती के जंगलों को काटा है और अपनी नदियों और महासागरों को दूषित किया है। ऐसा करते हुए मानवता ने अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक भोजन, जल एवं संसाधनों से खुद को वंचित करने का खतरा मोल ले लिया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के अनुसार जलवायु त्रासदी से बचने, प्रदूषण की चुनौती से निपटने और जीव जंतुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकने के लिए अगले 10 वर्षों का समय ही बचा है।
That is why on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses and civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the earth.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के दशक की शुरुआत के जरिए सरकारों, व्यवसायों, प्रबुद्ध समाज और नागरिकों को एकजुट कर धरती के घाव भरने के अभूतपूर्व प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाल कर एक ऐसा परिवर्तन लाया जा सकता है जिससे समस्त टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। यूएन प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक को वैश्विक कार्रवाई का आह्वान बताया है जिससे न सिर्फ पृथ्वी के संसाधनों को संरक्षण मिलेगा बल्कि 2030 तक लाखों नए रोजगार पैदा होंगे और गरीबी और भुखमरी मिटाने में मदद मिलेगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जो बताती है कि भूमि का क्षरण एक बड़ी चुनौती है और प्रकृति की रक्षा के लिए जरूरी है कि अगले एक दशक में चीन के आकार के बराबर क्षेत्र को बहाल किया जाए। खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने गुरुवार को जारी अपनी नई रिपोर्ट में सचेत किया है कि प्रकृति जितनी मात्रा में संसाधनों को टिकाऊ ढंग से प्रदान कर सकती है, मानवता उसका करीब 1.5 गुना इस्तेमाल कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
पारिस्थितिकी तंत्रों की पुनर्बहाली के दशक की शुरुआत पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वर्ष 2030 तक कम से कम 1 अरब हेक्टेयर क्षरित भूमि को बहाल किए जाने की पुकार लगाई गई है। साथ ही इस प्रतिबद्धता को महासागरों के लिए भी लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अभाव में वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। यूएन एजेंसियों के प्रमुखों ने बताया कि क्षरण की वजह से 3 अरब से अधिक लोगों के कल्याण पर असर पड़ रहा है जो कि विश्व आबादी का 40% है। यूएन एजेंसियों ने इस रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है कि प्रकृति जितनी मात्रा में संसाधनों को टिकाऊ ढंग से प्रदान कर सकती है, मानवता उसका 1.6 गुना इस्तेमाल कर रही है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 के दशक से अब तक 42 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि की कटाई हुई है। यूएन एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि व्यापक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्रों को ढहने और जैव विविधता को लुप्त होने से बचाने के लिए महज संरक्षण प्रयासों पर निर्भरता अपर्याप्त होगी। इस क्रम में उन्होंने देशों से आग्रह किया है कि कोविड-19 से पुनर्बहाली योजनाओं में कार्बन उत्सर्जन पर निर्भर सेक्टरों से सब्सिडी को हटाया जाना होगा। वन, नदी, महासागर और तटीय इलाके, ये पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन, प्रकृति क्षरण और प्रदूषण के तीव्र खतरों से प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करते हैं, मगर मौजूदा हालात में भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए खतरा पैदा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खेती योग्य भूमि, वनों, घास के मैदानों, पर्वतों, शहरी इलाकों, ताजे पानी के क्षेत्र और महासागरों पर सबसे अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यूएन एजेंसियों ने जोर देकर कहा कि 2 अरब हेक्टेयर क्षरित भूमि पर विश्व के सबसे निर्धन और हाशिएकरण का शिकार लोग रहते हैं। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भूमि की पुनर्बहाली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 200 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुखों ने इस सप्ताह एक साझा वक्तव्य जारी किया है, जिसमें सरकारों से 50 अरब डॉलर के रोडमैप को वित्तीय समर्थन देने का आग्रह किया गया है। इसके जरिए कोविड-19 से प्रभावित विकासशील देशों में वैक्सीनों, परीक्षणों और उपचारों की विषमता को दूर किए जाने का लक्ष्य है। बताया गया है कि महामारी का अंत करने और तेज पुनर्बहाली को सुनिश्चित करने के नजरिए से ये अहम होगा। साझा बयान में आगाह किया गया है कि अगर सरकारों ने अभी कार्रवाई नहीं की तो फिर संक्रमण और महामारी के फैलाव की नई लहरें जारी रहेंगी। अधिक तेजी से फैलने वाले और ज्यादा घातक वायरस के नए प्रकारों और रूपों से वैश्विक पुनर्बहाली खतरे में पड़ सकती है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की करीब 2 अरब खुराकों को अब तक वैश्विक स्तर पर वितरित किया जा चुका है, मगर इसका 0.5% ही निम्न आय वाले देशों को मिला है। संगठन ने शुक्रवार को बताया कि इन देशों में अग्रिम मोर्चे पर डटे स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को एक खुराक मिलना भी बाकी है, जिसे ध्यान में रखते हुए यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने देशों से करोड़ों खुराकों को दान करने का आह्वान किया है। बताया गया है कि 2 अरब खुराकों में से 75% से अधिक महज 10 देशों में पहुंची हैं, मुख्य रूप से चीन, अमेरिका और भारत में। इसके मद्देनजर यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों और सबसे निर्बलों की रक्षा के लिए 25 करोड़ खुराकों को दान किए जाने की अपील की है। विश्व में अब तक कोविड-19 के 17 करोड़ से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 36 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 2 महीनों में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत में संकट की स्थिति पैदा कर दी है। बचाव और रोकथाम उपायों से लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती पैदा हुई है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली में यूएन न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा ने बात की भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर बिशोय पाराजुली से।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि फिलहाल सबका ध्यान स्वास्थ्य संबंधी प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, लेकिन सतह के नीचे एक और समस्या पनप रही है, खाद्य असुरक्षा और भुखमरी की। भारत में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में इस महामारी का क्या प्रभाव होगा?
जो ये सेकेंड वेव आया, ये बहुत हार्ड था। शहरी एरिया में भी गरीबी बढ़ गया है, गाँव में भी और बढ़ गया है। करीबन 100 मिलियन आदमी ने आदमी के पास काम नहीं है, तो इसी हिसाब से उनका इनकम भी नहीं है। तो ये भी है कि पहले बार जो वेव आया था तो इकोनॉमी को बहुत खराब किया था इसने, तो अब तो बहुत जबरदस्त आया है तो इसने और खराब करेगा। ओवरऑल इस हिसाब से खाद्यान्न, न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार में जरूर जरूर इसमें खराब करेगा।
भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में कहा भी था कि महामारी का भुखमरी और खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे SDG लक्ष्यों को हासिल करने में हुई भारत की प्रगति पर असर पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है?
हमें जो गोल रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसमें जरूरी दखल पड़ेगा। ये भारत में अकेला नहीं है, संसार में भी पड़ेगा। जब एक ख्याल आया तो इसको अब कैसे रोकें, इसका असर, नेगेटिव असर, इसको क्या क्या एफर्ट करना होगा कि हम 2030 एजेंडा जो है SDG है उसको पूरा करें, इसको इस हिसाब से लेना चाहिए।
महामारी ने महिलाओं को भी विशेष रूप से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या आपको लगता है कि कोविड-19 ने पहले से मौजूद लैंगिक असमानताओं को और बढ़ा दिया है?
जब कोविड फर्स्ट वेव आया, हमने ऐसा स्टडी किया तो हमने देखा वो स्टडी में कि जब परिवार में खाना खाते हैं तो पहले बच्चों खाते हैं, इसके बाद पुरुष खाते हैं, महिला बाद में खाते हैं। ये दुख है कि औरत लोग को कम मिलता है, बट ये भी हम लोगों को पता है कि जब औरत जो बच्चा पाने वाली है और बच्चा को खुलाने वाली है तो उनको पोषक ज्यादा चाहिए और बच्चों को भी पोषक ज्यादा चाहिए। तो जब ज्यादा जरूरत आए यहाँ कम मिल रहा है तो असर तो बिल्कुल पड़ेगा।
WFP तो देश के दूर दराज के इलाकों में काम करता है, समाज के कौन से दूसरे वर्ग हैं जो खास तौर पर खाद्य असुरक्षा की चपेट में आए हैं?
ये असर हर लोगों को पड़ रहा है, कोई भी वेज अर्नर हो उसको असर बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जो जो लोग के पास ज्यादा पैसा हो और अमीर हो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आदमी महीनावारी तलब खा के जिंदगी गुजराना चाहता उनके भी लिए भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको महीनों महीनों काम नहीं मिल रहा है तो कैसे कमाएं, कैसे खाएं, घर के भाड़ा देने हैं, किराना देनी है तो किराया देनी है, बहुत लोगों ने ये पैसा बोरो कर रहे हैं।
तो ये जो COVID-19 के कारण देश में नए हालात पैदा हो गए हैं, ऐसे में खाद्य सुरक्षा हासिल करने के रास्ते में क्या चुनौतियां आएंगी आपके हिसाब से?
चैलेंज बहुत हो रहा है। उड़ीसा में मैं ट्रिप में गया था तो लोगों से मैंने पूछा आपको ये प्रोग्राम से क्या फायदा हुआ है, उन्होंने बोला जो प्रोग्राम नहीं होते तो लोग भुखमरी होते हैं, लेकिन ये भुखमरी से बचने से ये प्रोग्राम ने मदद कर रही है, लेकिन ये नहीं, ये मुश्किल तो लोगों में है क्योंकि अभी इस टाइम में पल्स नहीं दिया जा रहा है तो वो खाना के लिए डाइवर्सिफाइड नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास कैश भी कम है तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो होता है दूध और अंडे बच्चों के लिए ये नहीं मिल रहा।
तो COVID-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर भारत में WFP ने कुपोषण और भुखमरी पर अपने कार्य में किस तरह के बदलाव किए हैं, खासतौर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम COVID-19 की दूसरी लहर के असर से निपटने में सरकार को किस तरह सहयोग दे रहा है?
अभी ये दूसरा कोविड आए हैं, इसके रेस्पॉन्स के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिस प्रोग्राम से करीबन 2.5 और 3 लाख औरत बच्चों और आदमियों को मदद मिलेगा, पौष्टिक आहार मिले बच्चों और औरत को, और साथ साथ किचन गार्डन का भी प्रमोट करें, और दूसरी बात माइग्रेंट लेबरर हैं जिनको कुछ मदद नहीं मिल रहा जो छूट रहे हैं ये प्रोग्राम से, उनको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट साथी मिलके उनको भी मदद करें। जो हम काम करते हैं वो हम इस हिसाब से करते हैं कि इससे शिक्षा मिले, इससे सीखे तो बाद में सरकार से मिलजुल के इंटीग्रेट करके वो काम में मदद आए।
भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर बिशोए पाराजुली। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण श्रम बाजार में उपजे संकट के खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं है और रोजगार के अवसरों में होने वाली बढ़ोतरी वर्ष 2023 तक इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट दर्शाती है कि वैश्विक संकट के कारण 2022 तक बेरोजगारों की संख्या 20 करोड़ से अधिक हो जाएगी और निर्धनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ विषमता भी बढ़ेगी। पूरे ब्यौरे के साथ प्रतिष्ठा जैन।
UN श्रम एजेंसी की नई रिपोर्ट का शीर्षक वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया मौजूदा स्वास्थ्य संकट से उबर तो जाएगी मगर इससे कामकाजी निर्धनता के उन्मूलन में पिछले 5 वर्षों की प्रगति व्यर्थ हो गई है। UN एजेंसी के महानिदेशक गाय राइडर ने कहा कि कामकाजी निर्धनता 2015 के स्तर पर लौट गई है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 के पूर्वार्ध में लातिन अमेरिका, कैरिबियाई, यूरोप और मध्य एशिया सभी क्षेत्र विषमतापूर्ण पुनर्बहाली से पीड़ित हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन क्षेत्रों में पहली तिमाही में कामकाजी घंटों का 8% से अधिक नुकसान हुआ है जबकि दूसरी तिमाही में यह 6% से ज्यादा रहा है। यह नुकसान वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है जो कि पहली तिमाही के लिए 4.8% और दूसरी तिमाही के लिए 4.4% है। UN एजेंसी का अनुमान है कि वर्ष 2022 तक वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 20 करोड़ 50 लाख हो जाएगी जबकि 2019 में यह 18 करोड़ 70 लाख थी। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं पर इस संकट का विषमतापूर्ण असर हुआ है। महिलाओं के लिए 2020 में रोजगार के अवसरों में 5% की गिरावट आई है, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 3.9% है। युवजन के लिए रोजगार के अवसरों पर आर्थिक सुस्ती का असर जारी रहा है। वर्ष 2020 में 8.7% की गिरावट आई है, जबकि वयस्कों के लिए यह 3.7% है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य आय वाले देशों में संकट का सबसे अधिक असर देखा गया है, जहां युवाओं के लिए रोजगार मिलने में देरी और श्रम बाजार में आए व्यवधान के असर को लंबे समय तक महसूस किए जाने की आशंका है।
तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।